आशा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं।
दादा विश्व किशोर एक समर्पित विशेष महान आत्मा थी। थोड़े शब्दों में ने इसके बारे में कल कुछ थोड़ा बताया था कि बाबा के बड़े भाई उनके कुल में जन्म हुआ था। और बाबा ने व्यवहार के अंदर काफी शिक्षा वगैरह देके और काफी एक बहुत अच्छा कारोबार निर्माण करके उनको दिया। उनका कारोबार भी रजवाड़ों में ही था। अपने कारोबार के अंदर काफी सफल थे। अरे बाबा ने तो 34 में कारोबार समेत के इस भक्ति मार्ग के बाद ज्ञान मार्ग गीता के आधार पे अपने जसोदा निवास के अंदर, जिसके बारे में आपने सुने भी है, उसके बाद जब एंटी ओम मंडली का आंदोलन चला तो बाबा की प्रेरणा और पत्र दादा के पास पहुंचा। उनका भी कारोबार कलकत्ता में ही था। बाबा ने उनको दो शब्द लिखे, बाबा ने तुम्हारे को बनाया है और आज बाबा को तुम्हारी जरूरत है। पत्र पढ़ते ही उसने अपना राज कारोबार सब अपने भाई को दिया, जानते हुए भी कि वो सफल नहीं होंगे, फिर भी बाबा का बुलावा ऐसा उनको जैसा भगवान का बुलावा आया। वो गाड़ी में बैठ गए, जो उनको लेने का था ले लिया, बाकी सब अपने भाई को दे दिया। आंदोलन के बाद हम लोग शिफ्ट हुए कराची। विद्रोही ने कुछ केसेस वगैरह हैदराबाद सिंध सेशन कोर्ट में किए थे और वो ये चाहते थे कि बाबा को कोर्ट वगैरह के सामने हम लोग लाए। क्या उनका प्रोग्राम था, बाबा कराची में रहते थे, हम भी पूरा परिवार बाबा के साथ ही रहते थे। उसकी विशेषता मैं आपको बताता हूं। इसको मालूम पड़ा कि बाबा के खिलाफ हैदराबाद सिंध की सेशन कोर्ट ने वारंट जारी किया है बाबा को अरेस्ट करने के लिए। ये सीधा पहुंच गया हैदराबाद सिंध, वहां से टेलीफोन किया, मैंने उठाया, बोला कि 10:30 बजे वारंट लेके घर पे पहुंचेंगे, मतलब क्लिफ्टन जहां बाबा रहते थे क्लिफ्टन पहुंचेंगे, उनको अंदर घुसने नहीं देना। वो वापस जाएंगे कराची हाई कोर्ट, मैं आपको उसकी जो कला है और दूरंदेशी है उसकी कुछ झलक देता हूं, बता रहा हूं। जाते जाते उनको 12:30 बज जाएगा और वहां से उनको पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से हाई कोर्ट से वो परवाना लेके पुलिस की मदद के लिए पुलिस में जाएंगे। इतना समय लगेगा, साढ़े 3 बजे वापस वो क्लिफ्टन आएंगे, फिर भी रोक ठाक करना बस। दादा हैदराबाद सिंध से निकले और 3:30 बजे जैसा मेरे को प्रोग्राम उन्होंने बताया, मिनट बाय मिनट सेकंड बाय सेकंड 3:30 बजे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर उनके सामने रख दिया। ये जो मुश्किल थी वो टल गई। इस तरीके के दादा के अनेक विचित्र कार्य हैं और दादा का खास हम लोग की दीदी आदरणीय मनमोहिनी दादी, प्रकाशमणी दादी बहुत आदर करते थे बड़ा भाई के। यार
एक नामी कैसे करते थे? एक नामी जो डीलिंग करना, सामान लेके आना,
व्यवहारिक रूप में अगर जो देखो तो बहुत मानी हुई व्यक्ति थी अपनी फील्ड में, अच्छा ज्वेलरी था, अच्छा जानकार था। उसको मैं समझता हूं कि मुश्किल है कि किसी ने उसको मुस्कुराते देखा होगा। अगर जो कभी उसके चेहरे पे किसी ने उसको मुस्कुराते अगर जो देख लिया तो यूं समझो कि उसने कोई अच्छा मोटा सौदा कर दिया। इसके मैं आपको और भी बताऊं कि 48 में आफ्टर पार्टीशन हम लोग तो फिर भी ये समझे कि पाकिस्तान में ही थे। काफी बारिश पड़ी थी, बहुत भयंकर बारिश पड़ी थी और हम लोग कुछ 300-350 आपस में रहते थे कराची में। तो हम लोग को अपना साबुन तेल और भी बहुत सी जरूरतें जो पड़ती थी तो हम लोग खरीदते थे। हर एक चीज की जरूरत ही पड़ती है तो दादा को जब बाजार से मार्केट से मालूम पड़ा कि भाई माल की शॉर्टेज है, बारिश की वजह से फ्लडिंग वगैरह में कुछ सप्लाई वगैरह बंद हो गया है, तो ये सीधा कंपनी में सीधा चला गया। कंपनी में चला गया, वहां का जो जनरल मैनेजर था उससे बैठा, बातचीत किया तो उसने बोला कि भाई ठीक है, बात ऐसी हो गई है कि हम लोग के जो वेयर हाउसेस वगैरह है उसके अंदर पानी घुस गया है और जितना भी सामान है उसके अंदर रैपर्स वगैरह जो पैकिंग वगैरह है काफी खराब हो चुकी है। तभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, वापस इंग्लैंड भेजें रीपैकिंग के लिए। बेच तो नहीं सकते हैं क्योंकि गुडविल है, ब्रांड है, नेम है। और वही दादा को मांगता था कि वो अपने मुख से बोले कि भाई ये बात है। तो दादा ने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप जो सोच रहे हैं बहुत दूरांदेशी और अच्छी तरह से सोच रहे हैं, लेकिन इसका समाधान अगर जो आप इंग्लैंड भेजेंगे तो भी हो सकता है कि जो इनसाइड जो मटेरियल है उसके अंदर भी तो कुछ दाग वगैरह हो सकता है और वहां जाए वहां से पैकिंग हो जाए। मेरा तो सजेशन ये है, और बाजार में आप बेच भी नहीं सकते, मेरा तो सजेशन ये है कि आप उसको ये हम लोग खरीद लें आपसे। हम लोग दुकानदार तो नहीं है, ये तो कंजम्पशन के लिए ही जाएगा। कुछ माल उनका कोई 2.5 लाख रुपए का, आज का भाव नहीं कह रहा हूं, उस टाइम का जब वो साबुन की कीमत एक आना मुश्किल से होगी। वो लक्स टॉयलेट सोप, पामोलिव सोप, कैडम सोप, फ्रेंच सोप, ये इस चीजों की। तो दादा ने उसको बोला कि देखो ये धार्मिक संस्था है और हम लोग कोई भी चीज बेचेंगे नहीं, तो हम लोग अपना पर्सनल कंजम्पशन नहीं ले लेंगे, तो ऐसा ही यूं समझो कि एक मटेरियल लॉस हुआ आपका। ऐसे पैकिंग कराने में आपका खर्चा तो होगा ही। तो उनको ये बात समझ में आई, 2-3 ट्रक लोड कुल सौदा किया 5,000 रुपए में, 2.5 लाख रुपए का माल 5,000 में सौदा किया। आपको क्या बताऊं कि हम लोग अपने हाथ से कपड़े धोते थे, आपको तो ये मालूम है कि शेविंग के लिए राउंड केक्स मिलती है, केक्स लूज भी मिलते थे और डब्बी के अंदर भी मिलते थे, वो कॉलगेट मामूली वगैरह सब मिलते थे, वो भी उसके अंदर लाट के अंदर वो भी था। अभी हम लोग के पास तो ज्यादा करके कन्याएं थी, माताएं थी, क्या करें, और ट्रक लोड क्या करें। और सोचा कि ठीक है चलो साबुन हम लोग उससे हम लोग का बट्टी बटता था, कपड़े धुलाई होते थे, हम लोग प्रोफेशनल जैसा अपना ये धोबी अपना बट्टी फड़ाता है, आग लगाता है, ये करता है, उसके अंदर स्टीम पैदा होता है, कपड़े धोते हैं, पटकते हैं, ये करते हैं, हम लोग सब वही अपने हाथ से ही करते थे। और उसके अंदर हम लोग की जो आदरणीय दादी चंद्रमन जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनका बाप का डिपार्टमेंट था, इतनी आसामी इतनी हस्ती, लेकिन कितने निर्माण उनके डिपार्टमेंट के था,
धोबी घाट का इंचार्ज थे
और वो भी अपना हाफ पैंट पहन के, निकर पहन के धोबी खाते में आता था और जो भी डायरेक्शन वगैरह देता था हम लोग उनका आदर करते थे, हम पटकते हम लोग थे। बात रही कि उसके अंदर टैलकम पाउडर, हम लोग तो लिपस्टिक वगैरह तो पसंद ही नहीं होता है, साबुन वगैरह अपना साबुन लगाते थे, पाउडर वगैरह तो हम लोग को तो इजाजत थी नहीं, कोई लगाता नहीं था, अब करें क्या। तो हम लोग ऐसा रहता था कि मम्मा अलग रहती थी, मम्मा के साथ दादियां हैं, बड़ी दादियां हैं प्रकाश मणि, और ये उनका मकान बड़े बहुत बड़े थे, और फिर छोटी आयु वाले अलग रहते थे। हम लोग जो बड़े आयु में थे, 14 साल 15 साल जो हमारी आयु थी, 14 साल 15 साल, तो हम लोग का गुरु चंद्रास, दादा चंद्रास आप जानते हैं, हमारा मॉनिटर था, तो हम लोग का ग्रुप अलग था, हम लोग की पढ़ाई वगैरह जो भी आती थी अलग थी। तो अभी टेलकम पाउडर क्या करें, तो मैंने थोड़ा दिल दिमाग थोड़ा कुछ न कुछ खोजना करता ही रहता था। तो हमने बोला कि देखो इसको अगर जो इसके अंदर ये सुरस या गूंद वगैरह मिला के अगर जो हम लोग दीवारों को लगा दें तो खुशबू भी अच्छी आएगी और अपना काम भी सुतय हो जाएगा। देखो इसके अंदर कोई जैस्मिन की खुशबू आती है दीवार से, तो कभी लवेंडर आता है कभी, बहुत अच्छा बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है, काम चल गया। तो वो भी समझो कि एक चीज काम में आ गई,
व्हाइट वॉश में,
व्हाइट वॉश के अंदर। अब क्या है कि टेलकम पाउडर पकड़ नहीं सकता है दीवार को जब तक आप उसके अंदर कुछ एडहेसिव वगैरह नहीं डालें। तो गूंद वगैरह ये सब सस्ता मिलता था, उससे अपना काम पट गया, आइडिया सक्सेस। और जब हम लोग यहां आए, इतना माल था 48, हम लोग यहां 50 में आए हैं, तो एक एक के पास 12-12 सोप्स साथ में हम लोग लेके आए। तो मतलब इस तरीके का। अब जब हम लोग यहां पहुंचे तो कराची इतना ठंडा नहीं है, एक कोस्टल एरिया है, लेकिन
बॉम्बे जैसे बॉम्बे जैसे क्लाइमेट है।
हाँ, बॉम्बे जैसी क्लाइमेट समझो, थोड़ा ज्यादा ठंडा रहेगा क्योंकि आगे रेगिस्तान है। तो यहां जब पहुंचे तो बहुत ठंडी वगैरह लगी, बाबा ने दादा को आज्ञा दी कि भाई देखो बच्चों को ठंडी पड़ती है तो कुछ करना है जरूर। तो ये गए, इसको मालूम पड़ा कि कैलिको मिल अहमदाबाद में है, उसके पास कुछ वूलिंस पड़ी है लेकिन मिक्स विथ सम काटन यान या कुछ सिंथेटिक यान। गया, पहुंचा, अच्छी तरह से बातों बातों में उसको सब समझा के 1 रुपया वाल, उस टाइम मीटर नहीं था, उस टाइम जो बिकता था वो वाल के हिसाब से बिकता था।
वाल, वाल,
एक वाल, वाल, मीटर 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 जो आता है 39 इंचेस होता है, 39 प्लस, वार जो होता है 36 इंचेस होता है, गज, गज बराबर 1 रुपया गज। चद्दर बनाओ तो सब उसका, ये शूटिंग थी। अभी शूटिंग से अपने को रंग ढंग से मतलब क्या, अपने को तो ठंडी पड़ती है, उसको अपने को गर्म करने के मतलब, तो उसके बहुत सफलता योग योगदान और बहुत श्रूट, बहुत श्रूट थी। ये पांडव भवन, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो किस तरीके से उन्होंने सौदा ये किया। इसके बाद इसका जो लास्ट आयु बड़ी थी और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसने तैयारी की, कल ऑपरेशन होने का है, संकल्प चला उसका, डॉक्टर को बोला कि कल की तारीख कैंसिल करो, दूसरी तारीख मैं बताऊंगा। ठीक है, कैंसिल तो कैंसिल। ऑपरेशन उसका हरकृष्णदास हॉस्पिटल
बॉम्बे,
बॉम्बे में हुआ, होने का था। जो उसको संकल्प चला तो चले आए वापस। बापा को बताया कि बाबा मेरे को संकल्प चलाया और रमेश भाई से बात किया कि बाबा को कोई भी तरी से कष्ट न हो या कोई ऐसे सरकारी प्रॉब्लम्स हो या लीगल प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो टैक्सेस वगैरह का ये नहीं पड़े तो ये ट्रस्ट बना लो। रमेश दादा रमेश ये दोनों मिलके ट्रस्ट वगैरह का सब रजिस्टर किया। 3 महीने के बाद आए बॉम्बे, डॉक्टर को बोला अभी हम तैयार है, भले तैयारी करो। वही अपना हरकृष्णदास हॉस्पिटल में इसका प्रॉब्लम ये था कि ब्लड प्रेशर बहुत था, हार्ट की शिकायत थी, इसके अंदर उसके साथ अचानक इसका देहांत हुआ। बात यह थी कि दादा विश्व किशोर ने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि अगर जो खून की कमी रहे तो मेरे को अशुद्ध व्यक्ति का किसी हालत में खून मत देना। और दादाजी की जो हार्ट है काफी एक्सपेंड थी, दैट मींस जो ब्लड का फ्लो वो आम तौर जितना चाहिए उससे ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे कि लोवेस्ट 250 होना ही चाहिए, जो आम तौर हम लोग का 140-145 रहता है इसका 250 मिनिमम रहना ही चाहिए, नहीं तो ब्लड स्टार्वेशन काज हो सकता है एंड इट कैन आल्सो कार्डियक फेल्यूर हो सकता है। तो दादा ने मना करने के वजह से डॉक्टर का ध्यान नहीं गया तो उससे सप्लाई पूरा नहीं मिला और दादा का सुबह देहांत हो गया। ये जो इनको एक संकल्प आया, ये बाबा के अंदर जो उसका जो प्यार, बाबा को किसी हालत में किसी भी बात की तकलीफ ना हो, ये इंट्यूशन ये संकल्प उसके कारण इसने पहला अपना ऑपरेशन रोका। रमेश भाई को साथ में लेके इसने ट्रस्ट बनाया और बाबा ने कहा कि बाबा तरकालदर्शी है, ट्रस्टी रमेश दादा ही बनेगा। दादा के रमेश दादा ने इतराज किया कि हमारे बड़े बैठे हैं, अपना आदरणीय जगदीश भाई और भी अनन्य बाबा के रतन और हम तो अभी के हैं। बाबा ने उनको बोला कि बाबा त्रिकाल दृष्टि है और आपको मैनेजिंग ट्रस्टी बाबा नियुक्त करता है। उसके बाद 3 महीने के बाद ऑपरेशन हुआ, जिस बात का ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल, लेकिन फिर ये दूसरा एक कारण बन गया। ये तो एक बहाना ही होता है, जाने का होता है तो जाती है व्यक्ति, ऐसे उसका देहांत हुआ। आपको खाली यही बताने का था कितने दूरांदेशी से बाबा की सेवा की, बाबा की सेहत का भी इतना उसको मॉनिटरिंग करते रहते थे और हर कदम पे बाबा को जिस तरीके से दादा ने फॉलो किया है, बहुत कम व्यक्तियां हैं जिन्होंने किया है। अब मैं आपको थोड़ी झलक मातेश्वरी मम्मा के बारे में कुछ बताता हूं। हमारे सौभाग्य रहे कि हमने मम्मा का बहुत प्यार पाया। जब मामा का अव्यक्त रूप में इस शरीर को त्याग कर तो यही मैसेंजर उसके तन में आई, उसके ही सगे वाले ने स्टडी हॉल में बैठे थे, वैसे पूछा कि आप समझते हैं कि इस तन में मामा की आत्मा है। मैं बोला कि देखो अभी थोड़े समय के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। वो क्यों कि मामा अव्यक्त रूप में भी हम लोग को शिक्षा अभी दे रही है, उसके बाद टोली भी मिलेंगी। जब मेरा टर्न आएगा तो मेरे को टोली दो दफा देंगी और साथ में फल भी देंगी और हाथ में फूल भी देंगी और किसी को नहीं मिलेगा। मामा तो चली गई, मैसेंजर अपने तन में है, ये भेद तो उसको तो मालूम नहीं है, स्वाभाविक है। पहले जो भी थे माताएं गई कन्याएं गई, जो हम लोग बैठे थे ये भी गया, हालांकि वो मामा के रिश्ते में भी पड़ता है, ये भी गया, उसको टोली दिया। और मैं इसे मैंने बोला कि समाचार भी पूछेगी, अब जिस व्यक्ति में आया तो उसको हमारे परिवार के बारे में क्या मालूम। तो जब मैं गया तो मुस्कराया, दृष्टि दी, टोली दी, सबको जैसे दिया, फिर हाथ पीछे किया, दूसरा मांगा, दिया मेरे को, फला के रखा था भोग का, दो फल दिया, फूल भी रखा था, फूल दिया। मैं बोला अभी मामा है, स्वाभाविक है, तो विश्वास करना पड़ेगा। बाकी तो मामा की चर्चा तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, ये तो खाली एक मैंने आपको मिसाल दे दिया। अब मैं अपने विषय,
आप 14 साल बट्टी में थे, वो क्या क्या सेवा आप करते थे बाबा के साथ?
मैं तो बाबा के अंग संगी था। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जब मेरी आयु 15 साल की थी तब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। अंग्रेज था इंस्पेक्टर, मेरे को बोला कि तुम्हारी आयु क्या है, मैं बोला 15-16। तो बोला मालूम है कि 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं मिलता है। मैं बोला कि मेरिट्स पे अगर जो आप दे सकते हैं टेस्ट लो, मेरिट्स पे दे सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत क्रूशियल ट्रायल मेरे से लिया, टेस्ट लिया और मेरे को पास किया और 16 साल के अंदर मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में मिल गया। तो बाबा को कहीं भी लेके जाने का होता तो मैं लेके जाता था। सुबह को बाबा को समुद्र किनारे लेके जाने का मैं लेके जाता था। बाद में जब बाबा कारोबार से मुक्त होके जो अपना शेयर लिया था तो उसके अंदर हीरे लूज जड़े हुए नहीं, क्योंकि दुकानदारी बाबा को करनी नहीं थी। तो कैश के अंदर तो इतनी थी नहीं जो बाबा को अपना हिस्सा मिले, तो हीरे लूज वो लिए थे और बाकी नकद। तो ऐसे ही सबकी ये पालना हुई है, बाबा कभी किसी से डोनेशन वगैरह धन वगैरह किसी से बाबा ने कभी लिया नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी जितनी भी पूंजी थी उससे ही ये सब अपना चलता था। और मैं समझता हूँ खान पान के अंदर हम लोग कभी भी ये वेजिटेबल ऑयल वगैरह वो कभी इस्तेमाल नहीं होता था, प्योर घी बहुत कहके सब उस टाइम सब हम लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे। तो सुबह को बाबा को घुमाने के लिए लेके जाने का, बाद में कभी बाबा का मूड पड़े या जरूरत पड़े तो वही हीरे वगैरह उसका ग्रेडिंग करना, छाटने का, जैसा व्यवहार में होता ही है। तो मेरे को बोलते थे कि भाई आज वो लाट लेके आओ, वो वगैरह लाट लेके आओ, तो जैसे बाबा की इच्छा होती थी हम लेके आते थे। वो स्टार्टिंग किया, उसके बाद एक घंटा बाबा को मालिश करता था, मालिश करके बाबा स्नान दोबारा, पहले सुबह स्नान हुआ फिर दोबारा स्नान होगा और अच्छी तरह से भोजन वगैरह का इंतजाम तो खैर अपने टाइम पे होता ही था। और जब ये बात हुई कराची की, लेके आना लेके जाना, कहीं भी बाबा को जाने का हो तो मैं ही साथ में लेके जाते थे। फल वगैरह आज का जानकारी ज्यादा करके मैं ही करता था क्योंकि जानकारी मेरे को ज्यादा थी। जब यहां भी आए तो भी वही रसम, मालिश करना, बाबा जैसे ही मुरली से सीधा बाहर निकलते थे सबको साथ में लेके एक्सरसाइज, पहाड़ियां ये वो। कोई पहाड़ी यहां ऐसी नहीं है जिन्होंने जो बाबा के चरण नहीं छुए हुए हैं, हर पहाड़ी ने बाबा के चरण चूमे हैं। कभी इस पहाड़ी पे गए, कभी उस पहाड़ी पे गए, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो कुछ भी हो। एक दफा तो मैं आपको ये बताऊं कि काफी बारिश पड़ी थी तो बाबा हम सब बच्चों को अबू रोड लेके गया, पैदल गया, धर्मशाला में रात को रहे हैं, सुबह को फिर वहां से निकले, बड़े बड़े पेठे 25 किलो का 30 किलो का एक एक पेठा कंधों पे उठा के, बाबा को तो खैर उठाने नहीं दिया। तो हम लोग जितने भी, हम तो जरा थोड़ा शरीर का जरा पट्टा भी है समझो, तो ऊपर चढ़े पैदल इस अवस्था में। कहीं भी जाए, कभी कभी बाबा शरीर से अशरीरी अवस्था में भी मेरे को फीलिंग आती थी कि बाबा जा रहे हैं, उनको पूरा अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं है, कहीं खोए हुए हैं। आगे सामने कुछ पत्थर छोटा मोटा पड़ा है तो बाबा को चोट आ सकती थी, तो दौड़ के पत्थर को हटा देता था कि चोट नहीं है। मतलब इतना मेरा लव और बाबा के साथ लगन बहुत थी। और जब मेरे को बाबा को छोड़ने का समय आया, मेरे लिए बहुत एक कठिन परीक्षा थी कि बाबा को छोड़ पाऊंगा या नहीं। ये जो संकल्प मेरे को उठा है, तो ये जो समस्या हम लोग के सामने आई है बेगड़ी पाठ की, तो उसका समाधान सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बाबा को छोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल मेरे लिए समस्या थी। उसको बैलेंस करने के लिए मैं समझता हूँ कम से कम मैंने 4-5 दफा अटेम्प किया कि नहीं, लेकिन नहीं गया। 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर वापस लौट आया, मन नहीं लगा। क्योंकि जो हम लोग भट्टी में रहे ना, तो संसार का ये जितना वातावरण ये वो हम एडजस्ट नहीं करने पाए। बहुत मुश्किल समस्या मेरे सामने आ गई, लेकिन जो ड्रामा के अंदर था वो तो होना ही था। मेरे को तो अपना कर्मों का हिसाब तो लेन देन चुकानी थी।
बाबा से कैसे छुट्टी लिया?
मैं पहली जीवन के अंदर पहली दफा बाबा से खुली मन की बातें की है। बाबा को मैंने कहा कि मेरी आयु 23 साल की हो गई है और बड़ा भारी वजन लगता है, हम जाके कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी करके या सर्विस करके या कुछ भी करके जो भी मिले तो हम इस सेवा में लगा दें, कुछ बोझ हल्का हो सकता है। तो बाबा मुस्कुराए, बोला कि कर्म का ऐसा आप लेन देन तो चुकता करने का ही है, तुम्हारे को तो तुमने तो पढ़ाई भी नहीं किया, बाबा के पास धन भी नहीं है, कैसे करोगे? बाबा आपकी आशीर्वाद से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको तो जाने का ही है। पहली बात, अपने लाभ के लिए कार्य करो तो दूसरे का लाभ भी सोचने का है। अगर जो अपना लाभ देखेगा और दूसरे को हानि होगी वो कार्य कभी नहीं करना। ठीक है, किसी से मदद नहीं मांगने का कि तुम्हारा जन्म सिर्फ देने का ही है। मैं सर नीचे करके सुना तो सही, अर्थ भी समझा, मदद नहीं मांगू और पैसा भी नहीं है, क्या करूं? लेकिन सुन के ठीक है, कोई भी काम ऐसा कार्य ऐसा नहीं करना जिसके अंदर किसी को दुख या हानि हो। ठीक है, बाबा ने आशीर्वाद दी कुछ है? बाबा ने हर कार्य के अंदर सफलता का वरदान दिया। मैं जब बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा तो मेरे पास एक रुपया कुछ चार आना या पांच आना जेब में थे। और थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह सीखा। मैं मेरे को भेज दिया सिंगापुर। जसलोक हॉस्पिटल जो उन्होंने सुना है उसका मालिक ने मेरे को अपना सिंगापुर ऑफिस में भेज दिया। लेकिन तीन चार महीने के अंदर वहां से मेरे को छुटकारा मिला। कारण यह था कि जिस एरिया में हम लोग थे वो सब बाबा को जानते भी थे और सबको जब मालूम पड़ा कि उनका बेटा यहां सर्विस पे आया है तो भावनाएं भी होती है। कोई डिनर बोले कोई ये। एक तो हम लोग का खान पान, हम कहीं बाहर खाते नहीं थे तो ऐसी समस्या जब आई तो जो हम लोग के कंपनी का मैनेजर था उसने बोला कि डिसिप्लिन नहीं है। और एक बोला कि आप बॉम्बे जाइए, जो मालिक है उसने बोला है। ठीक है, हम नहीं गए। अब डेस्परेशन के अंदर मैंने बोला कि अभी तो भाई इस तरीके से तो चलेगा नहीं, तो मैं एक जबड़ी था लेकिन उसके पास जो भी माल था वो कटक का आता था, फिलिगड़ी। मेरे को मालूम था कि ये श्रीलंका में बहुत चलता है। मैं उसके पास गया, मैं बोला कि मेरे को माल चाहिए। हाँ माल लियो। कैटलॉग लाया, ये किया। मैंने बोला देखो पहले कुछ लेन देन का टर्म्स वगैरह हम लोग बना ले। क्या बनाएगा? माल लिया, पैसा दिया, बात कर। वही तो बात है कि मेरे जेब में 5 रुपए का नोट नहीं होगा। क्या बात क्या मजाक करता है? तो नहीं, हम मजाक नहीं करते। माल लेगा और 3 महीने के अंदर ना आपको पेमेंट कर देगा। बोला कि यहां तो यार जो भी आता है वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तू तो बोलता है कि हम मेरे पास रुपया है ही नहीं और माल चाहिए। 15 मिनट के बाद उसके मालूम नहीं क्या ऐसा संकल्प आया। जीवन के अंदर हमने कोई भी सट्टा खेला नहीं है लेकिन आज मैं तुम्हारे से सट्टा खेलता हूं। माल कितना चाहिए? मैंने 5,000 का खा लिया। मैं 10 का लिया, 5 का माल लिया। मैंने श्रीलंका भेजा, थोड़ा हेर फेर किया, कुछ ड्यूटी वगैरह के अंदर हेर फेर किया, माल उधर पहुंच गया, मैं गया। वो 5,000 रुपए का माल 12.5 में बिका। बड़े भाई उधर ही थे तो जिसको भेजा उसने बोला कि जब भी चाहिए अपना पैसे लेके जाना, तो जब भी जाएगा तभी जाएगा। उस बीच में उसने ये सजेस्ट किया कि क्यों नहीं यहां के रतन जो बहुत मशहूर है तो उसका लाभ क्यों नहीं लेते। तो मैं आपको यहां के जो जेम्स है, रूबीज है, बहुत मशहूर होते हैं, सफायर्स नीलम जिसको बोलते हैं, वो लेके जाओ। 50,000 का माल निकाला। मैं बोला इतना जो काम हम नहीं उठाएगा, 25 का दिया। तो क्या है कि पहले ही डीलिंग के अंदर मेरे को मेरी कैपिटल बन गई। जो भी उसका पैसा था, हम भागे पहले उसको दे दिया, बोला इतना जल्दी है, बोला माल बिक गया, जल्दी हो गई, पांच दिया, उसने बोला कि पांच नहीं है चार है, और भाई लिया तो पांच का है, बोले तो आपको 20% डिस्काउंट नहीं दिया है, वो काट के मेरे को चार दे दो, ठीक है। लेकिन मेरी कैपिटल बनी क्योंकि जो वहां से हम रतन लेके आए वो मेरे को उसका भाव डबल मिला। तब फिर हमने अपना कारोबार सही तरीके से, कैपिटल बन सही तरीके से शुरू किया, और पहले ही पहले हम भागते भागते अपने बाबा के पास आया, जो भी हमारे डायरेक्शन जो बाबा ने दिए उसी पर हम काम करते रहे। हर 15 दिन के अंदर हम अपने बाबा को पूरा समाचार देते थे, चाहे आर्थिक हो चाहे मन की भावनाएं हो, और हर 15 दिन उस पत्र के उत्तर में भी बाबा का जवाब आता था। मेरा लिखना शुरू इस तरीके से होता था, परम प्रिय पिताश्री, आपके बालक का आपको प्रणाम स्वीकार हो। समाचार ये है, वो जो समाचार होगा आपकी कोई भी आज्ञा हो तो आज्ञा परिमाण हम वो कार्य करते रहेंगे। और हर 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने, जैसा जैसा मौका मिलता था भागते भागते इधर आते रहे। और किस व्यक्ति के बारे में आपने इशारा दिया?
बाबा को उधर से फल बेचते थे।
हाँ, यहाँ की मंडी में जो मौसम का सब्जी वगैरह होता था वही आता था, बहुत छोटा था पहले, अभी तो घर इतने नहीं है जितनी होटलें हैं। तो हर हफ्ते बाबा के भोजन के लिए बाबा की चाहती चीजें जो यहां नहीं आती थी तो वो हम वहां से भेजते रहते थे। यूं समझो कि पार्सल बना के बहुत ढंग से, ताकि वहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 दिन तो जरूर लगेंगे, वहां से बड़ी पटरी की गाड़ी चलती है, यहां से छोटी गाड़ी चलती थी, ट्रांसफर करना पड़ता था। तो पहले सूखा घास डालते थे, बाद में जो घास एक आता है घोड़ा खाती है, जिसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रहता है, उसके अंदर सब्जी वगैरह पैकिंग करके वो डाल के भेज देते कि यहां एकदम हरी सब्जी मिलती थी। और मौका रहता वो दिन को सीधा जाएंगे, जो बस स्टैंड है उसके सामने, उसको पार्सल मिल ही जाएगा। और फल, ये हम लोग का हमारा नियम था। ये रही अपनी जो लगन बाबा की, इतना वृद्ध शरीर को और कुछ अध्यात्म की बातें कुछ बतानी है?
वो चप्पल सिलाते थे।
हाँ, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोग कराची में ही थे, और देह बहुत सी पाबंदियां बहुत थी, कपड़ा लो तो उसके लिए कूपन, पेट्रोल लो तो उसके कूपन, चमड़ा देखा कि नहीं, बहनों के पांव में चप्पल भी नहीं है, घस गए, सिलाई करते करते भी टूट फट गए, अब क्या करें। जितना भी लेदर निकलता था वो आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, चप्पल कोई खरीद नहीं सकता था, क्या करें। मैं देखता था कि यहां से बहुत सी ट्रक्स प्लेन्स को लेके जाती हैं, कहां लेके जाती है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के समझो कि हफ्ते में एक दफा ऐसे ही होता ही जाता है। तो मैं साइकिल पे इसका पीछा किया, देखा कि भाई ये जाके अपना यहां से कुछ 6-7 माइल दूर काफी बड़ा मैदान है, वहां जाके और तोड़ फाड़ कर देते हैं। तो देखा कि इसके अंदर कई किस्म का सामान निकलता है। वहां कराची के अंदर कोई इंडस्ट्री वगैरह थी नहीं, क्या करते थे मालूम नहीं है। तो मेरा ध्यान गया एक जो उनका पेट्रोल का टाकी आता है प्लेन के अंदर, अमुक अमुक साइज की, कोई विंग्स में जाता है, कोई इस तरफ जाता है, कोई नीचे लगाए, कोई ऊपर लगाया, तो नजर पड़ी, ले ली। कितने का देगा? जो भाव दियो, मैं 1 रुपया दू, 1 रुपये में दियो। लेके आया, उसको काटा पाटा, ये किया, मैंने देखा कि ये इनके पांव में चप्पल नहीं है। तो हम अगर जो चमड़ी की जगह पे इसी का बनाए तो कैसा होगा? तो सामान लेके आया, मोची मोची का ये जितना भी सिलाई करने का सामान लेके आया, सामान लेके चप्पल बनाया।
कितना टेस्ट लेके आते?
कितना टेस्ट?
कितना टायर नहीं था, टाकी थी, पेट्रोल की टाकी। वो वल्केनाइज रबर था और उसके ऊपर वल्केनाइज स्किन भी चढ़ा हुआ था। मजबूत तो छोड़ो, लेकिन उसकी शोभा भी पहने में बहुत अच्छा होता था और टिकाऊ। एक दफा पहनो तो पांव घस जाए तो घस जाए, वो चप्पल नहीं घसे। तो बना के मैं बाबा के पास लेके गया। अरे क्या लेके आए? बस चप्पल बनाया क्या, मोची है क्या? हमारा गया था देख, बोले ये कितने में पड़ा? हमारा टाकी तो मैं 1 रुपये में लिया, उसमें से 16 जोड़ी बनाए। 16 जोड़ी बनाए और है क्या? वहां तो पहाड़ लगे हुए हैं टाकियों का, तो भाई जाओ जाके लेके आओ, बस लेके जाओ, बस में ही सब सामान लेके आओ, पूरा टाकिया भर के लेके आओ। तो हम लोग का एक डिपार्टमेंट बन गया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना जो 5 साल तक इतना बड़ा। तो हम लोग यहां आए ना तो सबके पांव में जोड़ी वही पड़ा है और उसके साथ में 2-3 जोड़ी साथ में भी ले गया। मैं अब मेरे पास तो बूट था ही नहीं, पार्ट बेगड़ी, जूता तो था ही नहीं, वही जो अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल वो हम पहन के बंबई में गया। तो जे जे सन्स नाम सुना होगा, जो बंबई के काफी मशहूर है, बहुत पुरानी कंपनी है, कि बाबा जब भी बॉम्बे में आते थे खरीदी इनसे ही करते। तो उसने पूछा कि ये कहां से लिया है? नहीं भाई ये अभी चीज नहीं मिलेगी, छोड़ दो। उसको कुछ बताया नहीं। अब ऐसे ऐसे मतलब कई किस्म के हम तरीके से खोज पाछ करते रहते थे। 8 गाड़ियां थी और इतना पेट्रोल नहीं मिलता था, तो जब देखो तो कोई ना कोई गाड़ी का पेट्रोल अपना बैटरी डाउन ही होता था। मामा का गाड़ी अपना था, 4 दिन में एक छोटा मोटा चक्कर मारती थी, तो उसके अंदर उसको बैटरी चार्जिंग वगैरह नहीं होती थी। हर हफ्ते देखो कि 3-4 गाड़ियों की बैटरी रिचार्जिंग के लिए जाती थी, खर्चा होता था। तो मैंने देखा कि यार जिसको चार्जिंग को देता है उसके यहां बल्ब जले रहते हैं और है क्या। और जब मैं इसको बैटरी देता हूं तो उसको चार्जिंग को रखता है, तो जब वायर डालता है तो उसका बल्ब सब बंद हो जाता है। तो मेरे को मेरा बत्ती जला, तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी मैं समझ गया, इसका सीक्रेट समझ गया। तो जिस बंगलों में मामा रहती थी, तो मैंने उसका ये सर्किट बना के डाल दिया, देखा कि इसके अंदर कामयाब गया। सुबह को डाला और रात को देखा, तो रात नहीं, रात को डालता था क्योंकि बल्ब रात को जलते थे घर के और बंगलों के, तो रातों रात चार्ज हो जाती थी। सुबह को गाड़ी में डालो, गाड़ी एकदम फट करके स्टार्ट हो जाती थी, ये भी खर्चा बच गया। और यही दरअसल जो मेरा बिजनेस भी था, यही कला थी। हम लोग ये ताजमहल होटल्स काफी इंडिया के अंदर नंबर वन में गिनी जाती है। जितनी भी होटलें बनी है, चाहे कलकत्ता में, चाहे दिल्ली में, चाहे बेंगलोर में, कहीं भी बनी है, वो बहुत करके हम लोग ही बनाते थे, क्योंकि हम लोग जैसी आइटम उनको कभी पहले मिली नहीं है। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट समझो कि रिटर्न है या नहीं है, जबानी बोल दिया, हम लोग ने काम कर दिया, कोई बात नहीं। अभी टाइम हो गया, अभी फिर जब भी समय आएगा फिर आना जाना होगा, तो फिर बैठ के कोई ना कोई और किस्म की बातें करेंगे। नहीं अभी आना जाना होता रहेगा, और बहुत सी बातें हैं जो फिर इमर्ज भी होना चाहिए ना, मुख्य मुख्य बातें, ज्ञान की बातें तो आपके पास तो बहुत है, योग अभ्यास भी आपके पास खजाना है, और रोज बाबा हम लोग को खजाना देता ही रहता है। तो इसके लिए इस एरिया को छोड़ के बाकी किस तरीके से हम लोग आपस में, हम लोग की जीवन पास हुई है शुरू से लेकर, उसके बारे में आपको सब चर्चा देंगे, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है, जो जानकारी हमारे को है वो तो आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार तो एक ही हो गया ना, आपका लौकिक अलौकिक परिवार और हमारा लौकिक परिवार। ठीक है, अच्छा दो मिनट साइलेंस में बैठिए। Thank you.